आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाने जाएंगे राजभवन और राजनिवास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सभी मंडलों में नए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को दी मंजूरी। अयोध्या में 52 एकड़ जमीन में बनेगा श्रीराम मंदिर संग्रहालय। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला चरण शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बने उद्घाटन समारोह का हिस्सा। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बताया। कहा, प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। साथ ही राजभवन और राजनिवास अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाने जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह पहल सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित तथा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा में एक अहम पड़ाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित से जुड़े 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया मजबूत होगी।
प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किए जाने के संबंध में इसमें खास तौर से जो दिव्यांग जनों का सर्वेक्षण चिन्हांकन, दिव्यांग शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों की मरम्मत, प्रतिबंध सहायक उपकरण एवं चिन्हांकन, फिटमेंट चाल उपयोग, प्रशिक्षण निर्माण के वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम, जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सक्रिय हस्तक्षेप, सरकारी योजनाओं का सुगमता पूर्वक लाभ प्राप्त करने में सहायता, जो हर मंडल मुख्यालय के ऊपर इस प्रकार का केंद्र बनने का प्रस्ताव है।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर संग्रहालय के लिए 52 एकड़ जमीन देने पर भी मुहर लगा दी।
अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराए जाने के संबंध में इसमें टाटा एंड सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी 15 मार्च 2024 तो उन्होंने ये अपेक्षा की कि इसमें हमारे लिए स्थान कम पड़ेगा, जो उनका बहुत बृहद दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से उन्होंने जमीन को बढ़ाए जाने के लिए आग्रह किया था। तो उसी संदर्भ में अब जो नया लीज एग्रीमेंट जो है वो इस बात के लिए हुआ है कि अब 52.102 एकड़ विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उनको जमीन दी जा रही है।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले राज्य के नियुक्त खिलाड़ियों को राहत दी है। इसके लिए सरकार नई प्रणाली लागू करेगी जिसमें नियुक्त खिलाड़ियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, कैंप अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अवधि को सेवा अवधि ही माना जाएगा। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 12.69 करोड़ से अधिक यानी लगभग 82% मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही अब तक 28,491 बूथों पर 100% डिजिटाइजेशन का कार्य BLO द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र BLO को उपलब्ध नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में चौथे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के 1400 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में काशी तमिल संगमम का पहला संस्करण शुरू किया था, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की नींव रखी।
दुनिया देखनी चाहिए काशी की गर्मजोशी क्या है, काशी की रूप क्या है। मित्रों, इस पहचान को हमें सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। हमारी भारत में कोस कोस पर पानी बदलता है और चार कोस पर बानी बदलता है। हमारी बहुभाषी आयाम हमारी भारत को एकता में बांधने का एक रूप दिया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम से आम लोग काशी और तमिल की संस्कृतियों के साथ साथ सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत होंगे।
काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर मुर्गन ने हिंदी भाषा सीखने की इच्छा व्यक्त की।
मुख्यमंत्री जी ने इधर बच्चा का तमिल सीखने के लिए अवसर दिया, बट हमारा तमिलनाडु में किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा, मैं सीखूंगा हिंदी, मेरा राइट है, बट उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हर साल आपने इधर तमिल संगम इधर करे, इस बार हम कंक्लूजन रामेश्वरम में करेंगे, आपका रामेश्वरम में बहुत बहुत स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल संगमम की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 11 दिसंबर तक गन्ना किसानों से संबंधित कृषि चौपाल के आयोजन किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को बागपत में लगे कृषि चौपाल से हुई। एक रिपोर्ट।
पहली कृषि चौपाल का आयोजन बागपत में किया गया, जहां किसानों ने बढ़ाए गए गन्ना मूल्य के लिए सरकार का आभार जताया। कृषि चौपाल का आयोजन बागपत के अलावा हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। इन चारों जनपदों में दो दो कृषि चौपाल लगेंगी। 5 और 6 दिसंबर को हापुड़, 7 और 8 को शामली और 10 और 11 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों के लिए चौपाल लगाई जाएगी। इन कृषि चौपालों की कमान किसान ही संभालेंगे। इनमें किसानों की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यहां हुई चर्चा के आधार पर सरकार कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों के लिए कदम उठाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के भीतर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के गिरावट की संभावना जताई है। इसे ठंड में और भी बढ़ोतरी होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाने जाएंगे राजभवन और राजनिवास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सभी मंडलों में नए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को दी मंजूरी। अयोध्या में 52 एकड़ जमीन में बनेगा श्रीराम मंदिर संग्रहालय। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला चरण शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन बने उद्घाटन समारोह का हिस्सा। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बताया। कहा, प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।